नमस्कार भारत, 12 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान आज, 49 सीटों के लिए होगा मतदान, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दोनों गठबंधनों को अपनी अपनी जीत का भरोसा, जनता दल यूनाइटेड ने कहा कोई चुनौती नहीं।
बात कंफर्टेबली पार्टी जो है ना स्वीप करेगी। ये है कि अधिकांश सीटें इस इलाके में जीतेगी, इस फर्स्ट फेज में जीतेगी पूरा गठबंधन।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा कि नरेंद्र मोदी से डर गया है महागठबंधन और उनकी जीत तय है।
चुनाव की जो स्थिति है, जो लोगों का मूड है, उसमें महागठबंधन अपना हार मान चुका है, ऐसा प्रतीत होता है।
और सुनिएगा पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। हालांकि नक्सल प्रभावित कुछ सीटों पर कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मतदान 5 बजे से पहले ही बंद किया जा सकता है। बिहार में कुल 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे और गिनती 8 नवम्बर को होगी। इस बीच कल एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद नीतीश सरकार के एक मंत्री अवधेश कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में रूस के सैन्य अभियान का जोरदार बचाव किया है। उन्होंने इसका मकसद सीरिया में वैध सरकार को स्थिरता देना और वहां समझौते के लिए उचित माहौल तैयार करना बताया। रूस के एक सरकारी टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, हमारा मकसद एक वैध सरकार को स्थिरता देना है और राजनीतिक समाधान के लिए हालात तैयार करना है। आईएस और इसी तरह के आतंकवादी गुट राजधानी दमिश्क के इतने करीब हैं तो सीरिया की सरकार के साथ बातचीत के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है, जो खुद दमिश्क में घिरे हुए हैं। यही नहीं, अगर सीरियाई सेना ये साबित कर सकती है कि वो आतंकवाद से लड़ने में सक्षम है तो फिर इससे राजनीतिक की संभावना बहुत प्रबल होगी। ये थे रूसी राष्ट्रपति के शब्द। पुतिन ने पश्चिमी देशों के इन आरोपों को भी खारिज किया कि रूसी लड़ाकू विमान सीरिया में उदारवादी विपक्ष को भी निशाना बना रहे हैं, जिनका आईएस से कोई संबंध नहीं है। अफगानिस्तान में एक ब्रितानी सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे उस पर सवार 5 लोग मारे गए जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर उस समय हादसे का शिकार हुआ जब वो अफगान राजधानी काबुल के पास नेटो के एक प्रशिक्षण शिविर के पास उतरने का प्रयास कर रहा था। ब्रितानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में 2 ब्रितानी भी शामिल हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान की एक अदालत ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता जैसन रेजियान को जासूसी के आरोपों में दोषी करार दिया है। ईरान की समाचार एजेंसी इस्ना ने एक न्यायिक अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। रेजियान के पास अमरीका और ईरान दोनों की नागरिकता है और उन्हें पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी सरकार ने उन पर लगे जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने 5वें कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। बेलारूस के चुनाव आयोग के मुताबिक उन्हें 84% मत मिले, जबकि उनका कोई भी प्रतिद्वंद्वी 5% से ज्यादा मत हासिल नहीं कर पाया। 2005 में तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने बेलारूस को यूरोप की अंतिम तानाशाही करार दिया था। बीबीसी समाचार।
तारीख 12 अक्टूबर दिन सोमवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। अब से कुछ देर बाद बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 49 सीटों के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है और दोनों गठबंधनों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए और बयानबाजी खूब हुई। बिहार के पैकेज पर सवाल उठे, जंगल राज पर सवाल पूछे गए और गोमांस का मुद्दा भी उठा। इन सबके बीच आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार की जटिल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच सूबे के 10 जिलों समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नवादा और शेखपुरा में आज 243 सदस्यीय विधानसभा की 49 सीटों पर मतदान है। 2010 के विधानसभा चुनाव में इन 49 सीटों में से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के खाते में 30, भारतीय जनता पार्टी के 13, राष्ट्रीय जनता दल के 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट गई थी। जबकि आज बदले सियासी माहौल में कुल 583 प्रत्याशियों में एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने 27, लोक जनशक्ति पार्टी ने 13, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 6 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के 24, राष्ट्रीय जनता दल के 17 और कांग्रेस के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह चुनाव जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के फैसले पर जनमत संग्रह की तरह है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता का दिल्ली की करारी हार के बाद दूसरा बड़ा इम्तिहान है। यह चुनाव इस नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए चुनाव आयोग ने फुल प्रूफ इंतजाम करने का दावा किया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन के अनुसार
कुल 1.35 करोड़ इलेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 583 कैंडिडेट्स हैं फ्रेम में और टोटल 13,212 पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग की कार्रवाई किया जाएगा। इसमें 2,141 पोलिंग स्टेशंस में वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाएगा एंड पोलिंग की टाइम है 7 से लेकर 5 बजे तक सामान्य सभी असेंबली और कुछ असेंबलीज जहां पे LWA अफेक्टेड हैं वहां पे कहीं 3 बजे तक हैं कहीं 4 बजे तक हैं।
चुनाव में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज होना है उनमें से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के मंत्री विजय चौधरी और दामोदर राउत हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की रेणु कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस, कांग्रेस के सदानंद सिंह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शकनी चौधरी हैं। जाहिर है राजनीतिक गठबंधनों को भी पहले चरण के मतदान से अपनी अपनी ताकत का अंदाज लगाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी पुख्ता व्यवस्था को आजमाएंगी। नीरज सहाय, BBC, पटना।
इस बीच नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री अवधेश कुशवाहा ने स्टिंग का एक वीडियो सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले ये वीडियो सामने आया है जिसमें कुशवाहा को कुछ काम करने के एवज में पैसे लेते हुए दिखाया गया है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुशवाहा के इस्तीफे की पुष्टि की। बाद में अवधेश कुशवाहा ने कहा है कि वे इस आरोप से आहत हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मंजूर करने का आग्रह किया है। और अब बात पहले चरण के चुनाव प्रचार से। चुनाव प्रचार के दौरान एक ओर जहां महागठबंधन के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के बिहार पैकेज को लेकर सवाल उठाए, वहीं नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का खूब जिक्र किया। आइए सुनते हैं लालू यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कुछ चुनिंदा बयान।
पैकेज दिया क्या बोले थे भाई? बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? क्या बात है। 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी हम लोग नहीं समझते हैं। जवाले भाई
जंगल राज पार्ट वन में जेल का अनुभव नहीं था, जंगल राज पार्ट टू में अब जेल का अनुभव जुड़ गया है और इसलिए बर्बादी की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। और इसलिए मैंने पिछली बार जब आया तब मैंने कहा था RJD का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर।
जो हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि 1,25,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें से 1,08,000 करोड़ रुपए तो पहले के ही हैं, या तो पहले से जो योजनाएं चल रही हैं या पहले से अप्रूव्ड हैं, यानी जिसमें नया कुछ नहीं कि बिहार के लोगों के भरोसे की भी बोली लगा दी गई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। बिहार में चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों के अपने गणित हैं। दोनों ने प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए तमाम प्रयोग किए। अब वोटर उन प्रयोगों पर सहमति या फिर असहमति की मुहर लगाने जा रहे हैं। वोटरों के फैसले के पहले क्या सोच रहे हैं महागठबंधन के नेता, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव से बात की और पूछा कि पहले चरण के चुनाव को वो कितना चुनौती भरा मान रहे हैं।
कोई चुनौती नहीं, बहुत कंफर्टेबली पार्टी जो है ना स्वीप करेगी।
महागठबंधन 49 में से आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें
मार... कौन गिनती गिन सकता है? ये है कि अधिकांश सीटें इस इलाके में जीतेंगे, इस फर्स्ट फेज में जीतेंगे पूरा गठबंधन।
शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस भरोसे की वजह क्या है?
इसलिए कि जमीन पे हम घूमते हैं, काम करते हैं पहले से ही। ये गठबंधन हमने बनवाया, पुरानी पार्टी दो थी एक हो गई, जनता एक हो गई है, हम लोग नेता भी एक हो गए।
एनडीए का कहना है कि 25 सालों का हिसाब जनता लेगी और ये पहले फेज से।
प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं 45 साल कांग्रेस का और 25 हमारा 70 साल होता है।
तो आपको क्या लगता है क्या इस चुनाव में कोई हिसाब होगा?
आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी, हमको खुद ही तकलीफ होती है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं 45 साल और 25 साल हमारा 70 साल होते हैं ना, और वो तो 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो हम हिसाब दे रहे हैं सब जगह।
उन्होंने कई मुद्दे इस तरह के उठाए कि बिजली नहीं पहुंच पाई, विकास नहीं।
बिजली पहुंची है, बिजली काफी 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे सब जगह पहुंची गाँव में।
शरद जी, एक विकास की बात भी उठती है कि विकास जैसे
जो है वो उसको भी कह सकते हैं 66,500 किलोमीटर तो नए रोड बने हैं, 550 करोड़ से ऊपर के ब्रिज बने हैं, बाकी नीचे के तो बहुत बने हैं। फिर साइकिल से सारी बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, अस्पताल स्कूल सब सुधार रहे हैं, कानून व्यवस्था में जितने बाहुबली सबको अंदर किया। तो हम कहते रहे आपसे
जी। शरद यादव साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले विकास के मुद्दे पर बात हुई फिर वो उसकी दिशा भटक गई, मुद्दे ही बदल गए,
यहाँ मुद्दा नहीं भटकेगा।
जनता दल यूनाइटेड ने एक आपत्ति की है कि चुनाव के दिन जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन प्रधानमंत्री की रैली नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर नहीं होना चाहिए।
बात ये ना कि हम चुनाव आयोग से कहे हैं कि पूरे सूबे में चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है उसमें 5-10 जिले के लोग बुलाए जाते हैं, ये तो वेल नोन फैक्ट है। ये तो चुनाव आयोग का काम वो देखे, उससे हमारे लोगों ने जाकर के अपनी फरियाद भी रखी है
जी। यही मैं शरद जी जानना चाहता हूँ कि क्या जनता दल यूनाइटेड को ऐसा लगता है कि चुनाव के दिन अगर प्रधानमंत्री की रैली हुई और उसका जहाँ प्रसारण होता है तो लोगों के ऊपर वोटरों के ऊपर असर पड़ सकता है, आप इसको मानते हैं?
न्याय संगत होना चाहिए ये हमारा कहना, असर होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो चुनाव आयोग वो तो न्याय के साथ निष्पक्ष होकर के उसको फैसला लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम होता तो कई इलाके से लोग पहुंचते हैं, वहाँ बुलाते हैं वो लोग।
शरद जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं बिहार की, तो आपको क्या लगता है कि
40 साल से रहते देखते हैं यूपी बिहार उत्तर भारत पूरे देश में घूमते हैं,
इस बार बिहार के लोगों के लिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन चीजों को लेकर वो मन बना रहे हैं?
दोहरी सवाल विकास है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह का दावा है कि बिहार के मतदाता महागठबंधन को खारिज करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 49 में से 35 से ज्यादा सीटें भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में जाएंगी।
मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन ने विकास के मुद्दे को भटका करके जात पात के मुद्दे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के मुद्दे, हिंदू गौमांस खाते हैं ये मुद्दे, हिंदू के ऋषि मुनि गौमांस खाते हैं ये मुद्दे लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार लाने की कोशिश किया, ये मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसे नकार दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मुद्दे को ही अपना एजेंडा रखा और मेरा पूरा विश्वास है कि आज लालू प्रसाद यादव जी नीतीश जी जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के की रैली को अपने डीएम के मार्फत से परमिशन नहीं दिलवाया 12 तारीख की रैली को, फिर हम लोगों ने भी चुनाव आयोग को लिखा बात की तो चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन मिला। इतने हताशा में हैं, इतने डरे हुए हैं, लगभग चुनाव की जो स्थिति है, जो लोगों का मूड है, उसमें महागठबंधन अपना हार मान चुका है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बौखलाहट।
जैसे आपने कहा कि महागठबंधन ने मुद्दों को भटकाया, लेकिन ये आरोप तो एनडीए पर, भाजपा पर, प्रधानमंत्री पर भी लगता है कि वो विकास की जगह दूसरे मुद्दों पर चले गए।
नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कभी विकास के मुद्दे को से हटा नहीं, लेकिन जिन मुद्दों को लालू प्रसाद यादव जी ने दादरी से उठा करके बिहार में ले आया गौ मांस को, जिन मुद्दों को किसी ने सोचा नहीं था बैकवर्ड और फॉरवर्ड को, क्या हमें चुपचाप बैठना चाहिए? मेरे जैसे लोगों ने उनके प्रश्नों का जवाब दिया।
गिरिराज जी, जो पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 29 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास थी और 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जनता दल यूनाइटेड का ये गढ़ माना जाता है, तो आप किस भरोसे से कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की वहाँ हार होगी और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी?
ताकत किसी पार्टी की नहीं होती है, ताकत होती है जनता की। 2014 के लोकसभा में सारे लोग विरोध कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास जगा, जनता का आशीर्वाद मिला और आपने देखा कि भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी बिहार और देश में सरकार बनाए। इस बार भी हमें जनता पर भरोसा है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम 1,65,000 करोड़ रुपया दिया ये गाली दे रहे हैं, लोगों को झुठला रहे हैं, तो एक तरफ हमारे विकास के एजेंडे को देख रहा है, नरेंद्र मोदी का प्रयास देख रहा है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं, तो मेरा मानना है जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 2014 का जो आशीर्वाद था वो 2015 के विधानसभा में मिलेगा और 49 सीट में, मैं अहंकार नहीं भर रहा हूँ, 35 प्लस में सीटें आएगी। आपको सुन करके आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन मुझे जनता का मूड यही दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अपने अपने दावे, और अब चलिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सलमान राबी के पास, जो इस समय नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं। सलमान, ये बताइए कि वोट आपसे कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है, क्या उत्साह है? कुछ लोग बाहर आए हैं कि नहीं अभी?
जी, जैसे कि ये पूर्वी भारत का छोटा सा कस्बा है हिसुआ, और यहाँ पर बहुत जल्दी सुबह हो गई, यानी कि बहुत जल्दी लोगों का जो है बाहर निकलना और अपने अपने कामों में लगना शुरू हो गया। मैं हिसुआ के डाक बंगला के बूथ के बाहर हूं और मैं देख रहा हूं कि पोलिंग पार्टियां बहुत पहले ही पहुंच गई हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स भी अंदर जा चुके हैं और बस 10-15 मिनट की बात है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इस कस्बे में उत्साह भी है लोगों के अंदर काफी, इसलिए मैं देख रहा हूं कि लोग वोट डालने की तैयारी में भी नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पोलिंग बूथ के आसपास मंडरा भी रहे हैं, तो काफी उत्साह भी है और काफी चाक चौबंद सुरक्षा भी है, क्योंकि पेट्रोलिंग की मैं देख रहा हूँ, वज्र वाहन जा रहा है, फ्लैग मार्च टाइप का भी किया है सुबह सुबह पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और बहुत ही कड़े इंतजाम है सुरक्षा के, बॉर्डर पहले ही सील कर दिए गए रात से ही, और अब जैसे जैसे सूरज और ऊपर चढ़ेगा मुझे लगता है कि लोग और बड़ी संख्या में निकलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कस्बा जो है काफी गहमा गहमी देख रहा हूँ मैं सुबह में।
सलमान, ये बताइए कि वहाँ किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं?
देखिए, एक कमाल की बात पंकज जी जो है कि सत्ता विरोधी लहर अमूमन हुआ करती है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, तो वो चीज जो है, एक तो नरेंद्र मोदी का जो अब तक का शासन काल रहा उसके खिलाफ में भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और नीतीश कुमार के खिलाफ भी वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो अमूमन राज्य सरकारों के खिलाफ होती, वो भी 10 साल के शासन के बाद जो आनी चाहिए। आलोचना भी जो करते हैं वो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन पसंद नहीं आया, लेकिन तभी भी ये मुद्दा है कि काम बिहार में हुआ है, बिजली, सड़क, पानी, जो बुनियादी चीजें हैं उस पर काम हुआ है। अब वो जो राजनीतिक बयानबाजी का जो ओछापन आपने देखा कुछ दिनों से जो हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये लोगों के बीच में एक पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मुद्दे ज्यादा है क्योंकि बिहार ने काफी लंबा दौर देखा है अभाव का और गरीबी का।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आपका। अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य संघर्ष जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के बीच में है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से बात की और पूछा कि बिहार चुनाव में पहले चरण का कितना महत्व है।
पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये चरण तय करेगा कि आने वाले दिनों में यहाँ के चुनाव का रुख क्या रहने वाला है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने एक तरह से बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे कई जिले हैं जो पूरी तरह से नक्सलग्रस्त जिले हैं, तो ये एक फैक्टर भी है। और इसके अलावा इस चरण में जिन जगहों पे चुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा के जो विद्रोही उम्मीदवार हैं कई जगह बहुत ज्यादा है। जैसे समस्तीपुर की 10 सीटों पे 13 विद्रोही खड़े हैं, भागलपुर में बीजेपी के विद्रोही उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है।
कहा यह भी जा रहा है कि जो महागठबंधन है उसके पास इसमें पाने को ज्यादा कुछ नहीं है, खोने को ज्यादा मतलब डर है, जोखिम है।
कितना उसकी वजह यह है कि उनके पास सीटें ज्यादा है। जैसा मैंने पहले कहा कि जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर पिछली बार चुनाव लड़ा था तो इस पूरे इलाके में जेडीयू की सीटें ज्यादा थी और जेडीयू ने ठीक ठाक सीटें जीती थी इन इलाकों से। और जो भागलपुर की तरफ वाला इलाका है वहां से आरजेडी ने भी सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर के हो ये रहा है कि महागठबंधन के पास ज्यादा सीटें हैं 49 में पिछले चुनाव के आधार पर, तो इसलिए उनको गेन करने को ज्यादा नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि उनको असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। देखना यह है कि इन 49 सीटों पे जो उनकी पक्की सीटें मानी जा रही हैं उनमें भी जबरदस्त असंतोष या असंतुष्ट उम्मीदवार खड़े हैं। तो देखना यह कि किस तरह से किस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं। तो अभी कुछ कह पाना असंभव नहीं है, लेकिन महागठबंधन के लिए पुरानी स्थिति बनाए रखना या उनकी जो पार्टियों की स्थिति है अभी ये बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है।
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
इस समय भारत में बिहार चुनाव की जमकर चर्चा है। चुनाव प्रचार ऐसे हो रहे हैं जैसे लग रहा हो राज्य का नहीं देश का चुनाव हो। वहीं पाकिस्तान में लाहौर की एक सीट को लेकर कुछ ऐसा ही माहौल है। सुनिए पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी।
इस समय जैसे आपका मीडिया बिहारी बाबू बना हुआ है, उसी तरह हमारे पाकिस्तान का मीडिया लाहौरी मुंडा बना हुआ है। आपके यहाँ जितनी चिल्ली पुकार, गालम गलोच, लंबे लंबे वादे और बड़े बड़े जलसे पूरे एक राज्य के चुनाव में होते हैं, इतने तो हमारे यहाँ एक सीट के चुनाव में हो जाते हैं। बिहार का पूरा चुनाव एक तरफ और हमारे लाहौर के नेशनल असम्बली के हलका 122 का हल्ला गुल्ला एक तरफ। अब आप यही देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार में अब तक आखिर कितने जलसों में भाषणीय करतब दिखाए होंगे। 30, 40, 50, बस इतने जलसे तो हमारे इमरान खान साहब ने बस लाहौर में किए हैं। आप तो इस पे भिन्ना रहे हैं कि इस वक्त पूरा मोदी मंत्रालय सिर्फ बिहार में जुटा पड़ा है, जैसे एक राज्य का चुनाव ना हो देश की जिंदगी और मौत का सवाल हो। मगर हमारे यहाँ तो सिर्फ लाहौर की एक सीट जीतने के लिए नवाज शरीफ का पूरा मंत्रालय और उनके छोटे भाई साहब पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के सब अफसर और खानदान वाले सिर्फ हल्का 122 में कई दिनों तक खेमा गाड़े बैठे रहे। अगर इमरान खान ने दाता गंजबख्श के दरबार में फूल चढ़ाए तो नवाज शरीफ ने हजरत मियां मीर की कब्र पे हाजिरी दी। जैसे हार गए तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और जीत गए तो पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाएगा। मालूम नहीं आपके यहाँ ये रिवाज है कि नहीं कि जो हार जाए वो बेईमानी और धांधली का शोर मचाता है, मगर हमारे यहाँ तो हारने और जीतने वाले दोनों ही धांधली का शोर मचाते हैं ताकि एक की आवाज़ दूसरे के गुलगुले में दब जाए। सुना है आपके यहाँ चुनाव आयोग की बड़ी दहशत है, हर पार्टी और उम्मीदवार इससे कांपता है, मगर ये जमहूरियत तो ना हुई, ये तो तानाशाही हुई। इससे ज्यादा जमहूरियत तो हमारे यहाँ है जहाँ चुनाव लड़ने वाले और इलेक्शन कमीशन अपने काम से काम रखते हैं। चुनाव आयोग का काम आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट यानी हिजाबता अखलाक जारी करना है और उम्मीदवार का काम उसकी धज्जियाँ उड़ाना। اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی امیدوار قومی اسمبلی کے چناؤں میں 1,500,000 روپے سے زیادہ کا خرچہ نہیں کر سکتا، مگر اس 1,500,000 میں اتنی برکت ہے کہ ٹی وی چینلز پہ ایک کے بعد ایک وگیاپن جلسے جلوس، ٹرانسپورٹ، ورکرز کا کھان پان اور برادریوں کو سویدھائیں اور تحفے دینے کا سب کام اسی 1,500,000 روپے میں ہو جاتا ہے، اور چناؤ آیوگ امیدوار کو اس سگڑاپے پہ ویل ڈن جنٹل مین بھی کہتا ہے۔ کیا آپ کے یہاں بھی 1,500,000 روپے میں 1,500,000 کا خرچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، تو پھر ہم سے سیکھیے یہ چمتکار، آخر ہمسایہ ہمسائے کے ہی تو کام آتا ہے۔
یہ تھی پاکستان سے وسط اللہ خان کی ڈائری، اور اب سمے ہے اخباروں کی سمیکشا کا۔ اشوک کمار اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی اشوک
جی، پنکج، یاد کے سبھی اخباروں میں آرکشن کے مدعے کو لے کر پردھان منتری نریندر مودی نے جو صفائی دی ہے ایک طرح سے، اس کی سب طرف چرچا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ آرکشن کی ویوستھا کو ختم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نئی دنیا نے اس خبر کو ہیڈ لائن دی ہے، بہار میں چناؤ کی پورو سندھیا پر ممبئی میں بولے پی ایم، آرکشن پرنالی ختم نہیں ہوگی۔
امر اجالا بہار میں نہیں بولے تھے
جی، یہی نیتیش اور لالو برابر مانگ کر رہے تھے۔ وہیں امر اجالا اس پر لکھتا ہے کہ بہار میں چناؤ سے پہلے پردھان منتری نے پچھڑے ووٹروں کو صاف سندیش دینے کی کوشش کی ہے، تو دینک جاگرن نے پردھان منتری کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس اور وپکشی پارٹیاں چناؤ کے وقت آرکشن کو لے کر افواہیں اڑاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہار میں منتری اودھیش کشواہا کا جس طرح کل استعفیٰ ہوا، اس کی خبریں بھی سب اخباروں میں ہیں، اور اس کے علاوہ اس خبر کی بھی چرچا ہے جس کی کل ہم ذکر کر رہے تھے، بساڑا کی بیف کو لے کر ہنسا کے کارن
جو شادی ہوئی ہے
جی ہاں سرخیوں میں رہا یہ گام، اور کل دو مسلمان لڑکیوں کی شادی ہوئی اور ہندوؤں نے جس طرح سے سب انتظام کیے جی،
اس کو بہت اچھی تصویر
جی ہاں بہت اچھی تصویریں، ہیڈ لائن بھی بہت اچھی ہیں۔ کچھ آپ کی نظر، دینک جاگرن کہتا ہے شہنائی سے نکلی بھائی چارے کی دھن، تو وہیں جنستا میں یہ خبر پہلے پنے پر سب سے نیچے ہے، سرخی ہے نفرت کو نکار گونجا منگل گان، جبکہ ہندوستان نے اسے سب سے اوپر جگہ دیے پہلے پنے پر، اور مثال بتاتے ہوئے کہا ہے بساڑ نے مل کر کرایا ریشما اور جیتون کا نکاح۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ امر اجالا کے پہلے پنے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بگڑے سامپردائک ماحول کے ورودھ میں آگے آئے لیکھک ساتھ اور ساہتیکار لوٹائیں گے اپنے پرسکار۔ ساتھ ہی ساتھ دلی میں کل مکھیہ منتری کیجریوال نے اپنے ودھائکوں کی کلاس لی اور ان کو کہا کہ غلط کام سے بچیں اور پریوار ان پر نظر رکھیں، یہ خبر بھی سب اخباروں میں۔
بہت بہت شکریہ اشوک آپ کا، اور اب سمے ہے کھیل کی خبروں کا۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ 2020 سیریز 2-0 سے اپنے نام کرنے کے بعد مہمان دکشن افریقہ کرکٹ ٹیم نے کل سے شروع ہوئی 5 ایک دیوسیہ انتراشٹریہ کرکٹ میچوں کی سیریز میں بھی جیت کے ساتھ شروعات کی۔ دکشن افریقہ نے کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ایک دیوسیہ انتراشٹریہ کرکٹ میچ میں بھارت کو 5 رن سے مات دی۔ بھارت کے سامنے جیت کے لیے 304 رنوں کا لکشیہ تھا، لیکن سلابی بلے باز روہت شرما کے 150 اور اجنکیا رہانے کے 60 رنوں کی پاری کے باوجود ٹیم نردھارت 50 اوور میں 7 وکٹ کھو کر 298 رن ہی بنا سکی۔ اس سے پہلے دکشن افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا، اور کپتان اے بی ڈی ویلیئرز کے ناباد 104 اور فیف ڈو پلیسی کے 62 رن کی مدد سے 5 وکٹ کھو کر 303 رن بنائے۔ میچ کے بعد بھارت کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے کہا،
بولنگ میں بھی ہم نے کافی رن دے دیا اور بیٹنگ میں بھی ہمارے وکٹس گرتے رہے، ایک اوور میں 2 وکٹ گر گیا جس سے آل آف اے سڈن سٹیورٹ بھی نہیں بیٹنگ کرنے آ گئے، اس سمے تک دیکھے تو گیم بہت ہی اچھے طریقے سے پلیسڈ تھا، 33-34 اوور کے آس پاس سے جو 40 اوور کا پیریڈ تھا اس میں ہم تھوڑا اٹک گئے تھے، ہمیں پرابلم ہوا فریلی روٹیٹ کرنے میں۔
اب دونوں ٹیموں کے بیچ دوسرا میچ بدھوار کو اندور میں کھیلا جائے گا۔ ادھر بیڈمنٹن کے کورٹ پر تیسری وریتا حاصل بھارت کے اجے جیرام نے ڈچ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ جیت لیا ہے، فائنل میں انہوں نے 12ویں وریتا حاصل اسٹونیا کے راول مسٹ کو 21-12, 21-18 سے ہرایا۔
اور کارکرم کے انت میں اب سمے ہے مکھیہ سماچاروں کا۔
بی بی سی سماچار۔ بہار میں ودھان سبھا چناؤں کے پہلے چرن میں آج 49 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے سیریا میں روس کے سینے ابھیان کا زوردار بچاؤ کیا ہے۔ بیلاروس میں راشٹرپتی الیگزینڈر لوکاشینکو اپنے 5ویں کاریکال کے لیے پھر سے راشٹرپتی چن لیے گئے ہیں۔ 2005 میں تتکالین امریکی ودیش منتری کونڈولیزا رائس نے بیلاروس کو یورپ کی انتم تاناشاہی بتایا تھا، اور ایران کی ایک عدالت نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے سنواداتا کو جاسوسی کے آروپوں میں دوشی قرار دیا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने, पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।